कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को दूर करने और अधिक निवारक उपायों को लागू करने के लिए आह्वान पढ़ रहे हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अक्सर सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामने करने वाली महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करता है। पिछले 5 वर्षों में 3 में से कम 1 ऑस्ट्रेलियन का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न किया गया। द पावर टू प्रिवेंट कोलिशन ऑस्ट्रेलियन सरकार से अनुरोध कर रहा है कि वो रिस्पेक्ट वर्क रिपोर्ट की सभी सिफारिशों को लागू करके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए। ऑस्ट्रेलियन सेक्स डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर केट जेनकिंस की 2020 की राष्ट्रीय जांच सौंपे जाने के 2 साल बाद रिपोर्ट के सिफारिशों का केवल 1 ही हिस्सा लागू किया गया है। विक्टोरिया लीगल एंड इक्वालिटी लॉ प्रोग्राम मैनेजर मेलेनी श्लीगर पावर टू प्रिवेंट कोलिशन की सदस्य हैं और वो कहती हैं कि ये काफी नहीं है।
2 years ago, Kate Jenkins, the Sex Discrimination Commissioner, set out a clear plan for the government to make changes to prevent sexual harassment at work. 2 years on from that report, we're still waiting for those changes to be made. We've come together as a group representing the legal and health sectors, business, community groups, victim survivors, calling for those urgent changes to be made.
कोलिशन में स्वास्थ्य, पारिवारिक हिंसा, व्यवसाय, संघ और कानूनी क्षेत्रों में 60 सामुदायिक संगठन शामिल हैं। सुश्री श्रीगर का कहना है कि रिपोर्ट की उत्कृष्ट सिफारिशों में से एक ने पीड़ितों की शिकायतों पर भरोसा करने के बजाय यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए नियोक्ताओं पर जिम्मेदारी डाली है।
One of the key changes that has to be made is to change the Sex Discrimination Act so that employers must take proactive steps to stop sexual harassment. There are so many things that can be done to prevent sexual harassment from happening, but it's the employer who has the power to understand the sexual harassment risk factors and create a safe and equal workplace, not a 15-year-old working in their first job or a woman on a temporary visa who has no bargaining power.
अब अभिवक्ताओं का कहना है कि ये केवल व्यक्तिगत व्यवहार ही नहीं है जिसकी बात करना है, बल्कि व्यापक प्रणालीगत परिवर्तन की आवश्यकता है। नरीन यंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी में इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिजिनस एजुकेशन एंड रिसर्च में प्रोफेसर हैं। वो कहती हैं कि इंडिजिनस और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोग विशेष रूप से कमजोर हैं, प्रभावित हैं और इसके कई कारण हैं।
One is the constant racism and bias that is directed towards Aboriginal and Torres Strait Islander people in the Australian community and in day-to-day interactions. And we know that this happens at work. We have evidence and by way of the Gary Ellis survey produced by UTS Jumbunna and Diversity Council Australia to indicate that this is, of course, not just anecdotal, that it is certainly the case.
So Sri Yang ka kehna hai ki niyoktaon ke bajaye shikayatkarta par zor dena hanikarak ho sakta hai.
It means that the complainant has to go through the trauma of reliving it constantly until, if it's not resolved at the workplace, it goes to court, and then the complainant has to put, usually herself, sadly, up and be subjected to all kinds of cross-examination. And we know what happens to women in matters of sexual assault, which is what sexual harassment is, and what we wore or what we were doing or what we did is up for examination and questioning.
वो कहती हैं कि Aboriginal और Torres Strait Islander महिलाओं के लिए और भी अधिक चुनौतियां हैं।
But that particular interaction combined with the sexual violence that has been directed towards Aboriginal and Torres Strait Islander women since colonization means that there is a particular vulnerability given the normalcy of both racism and sexual violence towards Aboriginal and Torres Strait Islander women in the Australian community that obviously makes the indigenous female community more vulnerable.
सुश्री श्रीगर का कहना है कि ये उनके लिए चौंकाने वाली बात है कि ये बदलाव अभी तक लागू क्यों नहीं किए गए हैं.
The evidence is there. The knowledge of and understanding of sexual harassment risk factors and the barriers preventing victim survivors from reporting and the cultural change work that employers can do to minimize the risks, it's there. We know what we need to do.
Mahila Kanun Seva New South Wales ki principal solicitor Philippa Davis ka kehna hai ki karyasthalon ko apni bhumika nibhane ki aavashyakta hai.
So it's time for workplaces to take responsibility for their important role in providing a safe workplace and to also be held accountable if they fail to do so. So we need laws which give the Australian Human Rights Commission the powers to enforce a new duty, a positive duty, as well as powers to investigate systemic sex discrimination and sexual harassment so the burden doesn't always fall to individual victim survivors.
Aur Sushri Young ka kehna hai ki ye manav sansadhan udyog ke liye bhi kadam badhane ka samay hai.
Examine itself, examine its own responses, and examine and support and what the Sex Discrimination Commissioner has recommended.
यदि आप या आपका कोई परिचित यौन उत्पीड़न, पारिवारिक या घरेलू हिंसा से प्रभावित है, तो 1-800-RESPECT को 1-800-737-732 पर कॉल करें या www.1800respect.org.au पर जाएं. आपात स्थिति में 000 पर कॉल करें. SBS न्यूज के लिए हाना क्वान की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी के लिए प्रस्तुत किया अनीता बरार ने.